అమాని త్వాం అధమ్మిత్వాం అహింసా శాంతిరాజవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మవినిగ్రహ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్య మన అహంకారే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం ఆసక్తిర్నా విశ్వసంగా పుత్రదారాగృహాదిషు నిత్యం చాచమచిత్తిత్వం ఇష్టానిష్ట భవతిషు మయి చానన్యయోగేన భక్తిరప్యావిచారణి వివిక్తదేశ సేవిత్వం రతిరజన సంసిది అధ్యాతం జ్ఞానం నిత్యాత్మం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఏతజ్ఞానం ఇతి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యతో అన్విత వినమ్రత దంభహీనత అహింస సహిష్ణుత సరళత ప్రమాణిక గురు కే పాస్ జానా పవిత్రత స్థిరత ఆత్మ సంయమ ఇంద్రియ తృప్తి కే విషయో కా పరిత్యాగ అహంకార కా అభావ జన్మ మృత్యు వృద్ధావస్థ తథా దుఃఖ దోషో కీ అనుభూతి వైరాగ్య సంతాన స్త్రీ ఘర్ తథా అన్య వస్తువో కీ మమతా సే ముక్తి అచ్చి తథా బురి ఘటనాఓ కే ప్రతి సంభావ మేరే ప్రతి నిరంతర అనన్య భక్తి ఏకాంత స్థాన మే రహనే కీ ఇచ్ఛా జన సమూహ సే బిలగావ ఆత్మ సాక్షాత్కార కీ మహత్తా కో స్వీకారనా తథా పరమ సత్య కీ దార్శనిక ఖోజ ఇన్ సబ్ కో మే జ్ఞాన ఘోషిత కర్తా హూ ఔర్ ఇన్కే అతిరిక్త జో భీ హై వై సబ్ అజ్ఞాన హై बोलो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो भगवद गीता यथारू पूरे संसार को देने वाले जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जो कि एक युग पुरुष हैं सनातन धर्म की रक्षार्थ प्रकट हुए हैं जिसके अनुसार चलने से ही हमारा परलोक सुधर सकता है हम यम यातनाओं से बच सकते हैं और अपने घर वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद हम भक्ति करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, मंगलारती जाते हैं, हम कैसे समझेंगे कि हम भक्ति पथ में आगे बढ़ रहे हैं? मृत्यु पथ पर तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं, मृत्यु हमारी निकट आ रही है। कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, वो नहीं वापस आएगा। मृत्यु तो आ रही है निकट, लेकिन प्रसन्नता के हम ये कैसे समझे कि हम वैसे देखो कि मृत्यु के निकट आने से हमने पहले भगवान के निकट आ जाना है। हमने ऐसा बनना है कि बस भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। तो भक्त ने पूछा, प्रभु आप प्रभुपाद हम कैसे समझेंगे कि हम कुछ उन्नति कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था। तो आप कृपया सारे भक्त, सारी माताएं, सारे बच्चे, इन बातों को याद रखो। दो बातें प्रभुपाद कहते हैं कि एक काम, स्त्री आकर्षण, और दूसरा ईर्ष्या। ये या तो कम हो रहे हैं या समाप्त हो चुके हैं। समाप्त होना तो बड़ी दूर की बात है, जब समाप्त हो जाए समझो फिर हम भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए। ये दो महान दोष प्रभुपाद ने बताए हैं। वैसे जो सारी बीमारियां शुरू हुई हैं, सारी बीमारियों का कारण ये काम है। काम जो है ये सारी बीमारियों का कारण है, इसने हमको दूषित कर रखा है। इस काम ने हमारी बुद्धि को मलिन कर रखा है। तो हम लोग जो भगवान श्री कृष्ण बड़ी कृपा करके गीता में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं, अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा, अथ केना प्रयुक्तोऽयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षण्यावलादिवा नियोजितः। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक जबरदस्ती उसको पाप में लगाया जा रहा है। पाप का दंड था तो फिर भी वो करते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन के इस प्रश्न का, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महात्पापा विदिये नम ही वैरी नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है, और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु ये दुष्ट काम, ये भगवान ने कहा। भगवान से बड़ी, कृष्ण से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। अभी आदमी क्यों इतनी मेहनत करता है, दुकानदारी है या नौकरी है, बड़ी मेहनत करता है इस काम वासना की तृप्ति के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ये जो काम है ये इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, सबको भक्षण कर रखा है। और ये जो बड़ा सुंदर मौका मनुष्य देह का भगवान ने हमको दिया है ताकि पुनः हम उनको मिल सकें, ये मौका जो है ये पापी गंवा देगा। इस काम के कारण ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा और फिर से हम, जैसे आप देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े पतंगे जानवर तो 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। इन योनियों में हम चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में हम चले जाएंगे और फिर पुनः शरीर में नहीं आएंगे, ऐसा भी भागवत में कहा है। जो मनुष्य शरीर को पा करके सबसे बड़ी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि का हल नहीं निकालता, यानी कि भगवत प्राप्ति नहीं करता, वो फिर से 84 लाख योनियों में जाकर आवागमन में भटकता रहता है और फिर भगवान उसको मनुष्य शरीर नहीं देते। तो ये बड़ा प्रबल है और जाता कैसे है प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये है क्या जो कृष्ण प्रेम, हम अपराध के कारण, अपराध क्या हुआ, भगवान से ईर्ष्या की हमने कि मैं भगवान का सेवक क्यों रहूं, मैं खुद भगवान बन जाऊं। तो भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते, तो हमारा पतन हो गया, इस आवागमन में हम आ गए, 84 के चक्र में हम आ गए और कष्टों को भोग रहे हैं। ये शरीर आत्मा को सजा है, कई प्रकार के कष्ट हम लोग भोग रहे हैं। तो भक्त के प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद दे रहे हैं, काम या ईर्ष्या। ईर्ष्या पहले भगवान से की थी हमने, ये तो प्रभुपाद ये भी समझा रहे हैं एक कैसे घटेगा काम, जब भक्ति बढ़ेगी। जब भगवान से अलग हो गए तो शाश्वत कृष्ण प्रेम ने इस काम का रूप धारण कर लिया। ये कुछ नहीं है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जैसे दूध में खट्टा डालो, इमली डालो तो दही बन जाता है, दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, पर दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। देही देही है और दूध दूध है। तो ये काम कुछ नहीं बल्कि कृष्ण प्रेम का विकृत रूप, सारे दोष इसने पैदा कर रखे हैं। तो ये जो विकृत रूप है कृष्ण प्रेम का, ये कैसे समाप्त होगा काम, पुनः जब प्रेम जागृत होगा, ये जो पद्धति निष्काम भगवान की सेवा होगी। अब देखो कि एक वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, काम हमको भटकाता है, हमारे जो पूर्वकृत जो पाप कर रखे हैं हमने, बुद्धि हमारी जो मलिन हो गई है उससे हम नहीं समझते। एक माता हुई, महाप्रभु जो कलयुग का धर्म सिखाने के लिए प्रकट हुए हैं, भाई कलयुग में हरि नाम संकीर्तन सब करो, इससे तुम्हारे कई जन्मों के पाप धुल जाएंगे और तुम भगवत प्राप्ति करोगे। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। तो भगवान कीर्तन करते थे, नृत्य कीर्तन भगवान करते थे। जब भगवान कीर्तन करते थे सब लोग उनके कीर्तन के दर्शन करते थे, लोग भी साथ कीर्तन करते थे। बड़ा दिव्य दर्शन है भगवान का। लेकिन एक माता, जब भगवान कीर्तन करने के बाद बड़ा पसीना आ जाता था उनको उनके दिव्य शरीर से, तो भगवान स्नान करते थे, नहाते थे। नहाने के लिए जब आते थे तो गंगा जल के घड़ों की कतार लगी होती थी, बड़े अच्छे ढंग से गंगा जल घड़ों में भरा हुआ है और उनकी कतार लगी हुई है। तो परमपिता पूछते थे, श्रीनिवास ठाकुर जी के घर में कीर्तन होता था शुरू में, श्रीनिवास ठाकुर के घर से ही कीर्तन प्रारंभ होगा, श्रीनिवास आंगन। तो भगवान श्रीनिवास को पूछते थे, श्रीनिवास ये इतनी अच्छी घड़ों की कतार कौन लगा के रखता है, जानते हैं सब कुछ, फिर भी लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं ये आपकी दासी दुखिया है, उस माता का नाम था दुखिया। भगवान कहते हैं वो दुखिया नहीं है, वो तो सुखिया है। भगवान ने उसका नाम सुखिया रख दिया, क्योंकि सब भगवान के कीर्तन के नृत्य के दर्शन कर रहे हैं, उस सेवा में लगी हुई है। शुरू शुरू में जब हम संस्था में आए तो विदेश में चले गए इस डर से कि घर वाले कहीं आके ले ना जाए हमको, ये भी बात थी। तो वहां पर गाड़ी नहीं थी, अफ्रीका में गए। अफ्रीका देश बहुत सुंदर है, जलवायु भगवान ने बहुत सुंदर, ना गर्मी ना सर्दी, खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी होती हैं। वहां चले गए, गाड़ी नहीं थी, पैदल चलना, पैदल दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर जाना और प्रचार करना, मेंबर बनाने, पुस्तकों का वितरण भी किया पैदल चलकर बिना गाड़ी के। तो बहुत आनंद था, प्रभुपाद को रिपोर्ट मिल गई कि तुम रोज मेंबर बना रहे हो। प्रभुपाद ने पत्र लिखा मेरे को, आशीर्वाद दिया कि माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सबको सेवा में लगना चाहिए। एक बार उधर क्या हुआ, मायापुर में प्रभुपाद के टाइम, ये लिखा है प्रभुपाद ने अष्टम स्कंद में, ये लिखा है। वहीं अफ्रीका से हमारे पास एक काला भक्त था, वो था अमेरिका का, अमेरिका में काले बहुत है, अफ्रीका से ले गए उनको काम करने के लिए। उसका नाम था शर्मा दास, बड़ी सेवा भी करता था, लेकिन उसने सोचा बस मैं अभी हरिदास बन जाऊंगा। वो आ गया मायापुर में और उसने एक कुटिया में इधर कहां पर जप करने लगा, बस जैसे हरिदास जी 22 घंटे करते थे, जप करने लगा। वो 3 लाख नाम रोज का पर मैं सेवा सेवा कुछ नहीं करूंगा। कुछ ही दिन उसने किया और फिर भाग गया वहां से। प्रभुपाद ने लिखा है हमें हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी, हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे। हरिदास ठाकुर तो मुक्त पुरुष थे, वो ब्रह्मा जी के अवतार थे। तो प्रभुपाद ने लिखा एक अफ्रीकन भक्त हरिदास जी की नकल करने लगा और कुछ दिन नहीं कर सका, फिर भाग गया वहां से। 11 दिन जप नहीं कर सका। तो शुरुआत में जब हम अपना परीक्षण करें कि मैं कितना काम विकार से मुक्त हूं, मैंने पहले क्या क्या काम पाप किए हैं, मेरे मन में कितनी गंदगी है, काम और ईर्ष्या, मेरे मन में कितनी दूसरों के प्रति ईर्ष्या है। अगर मैं किसी से नफरत करता हूं तो ईर्ष्या है वो। अभी जैसे भागवत में वर्णन आ रहा है, शुभदेव महाराज आ गए जब परीक्षा जी पहुंच गए गंगा के किनारे। वर्णन आ रहा कि शुभदेव महाराज किसी से अपेक्षा नहीं करते थे कुछ भी। हमारे अंदर इतनी अपेक्षा भरी हुई है, ये सब हम पाप कमाते हैं। पाप कमा करके आध्यात्मिक उन्नति को रोक देते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति अगर समाप्त हो गई, जीवन तो समाप्त हो ही जाएगा एक दिन, तो फिर बड़ा बुरा है, फिर अच्छा नहीं है। हम सबको परीक्षण करना है कि मेरी दूसरों के प्रति ईर्ष्या है या नहीं है, दूसरों से मैं ईर्ष्या करता हूं या नहीं करता हूं, मेरे मन में काम विकार है या नहीं है। ये परीक्षा सभी को करनी चाहिए, सभी पुरुषों को, सभी स्त्रियों को, सभी बड़ों को, सभी छोटों को, सब। इसी से सारे रोग उत्पन्न हुए हैं। ईर्ष्या तो पहले भगवान से थी और पतन हो गया, अभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बनी हुई है। तुम देखो दुकानदार है, अगर एक दुकानदार का काम अच्छा हो गया, दूसरा कहते उसका डाउन कैसे काम हो, ईर्ष्या बनी हुई है। तो काम और ईर्ष्या, प्रभुपाद ने बोला, ये सबको देखना है, ये काम ये कम हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं। समाप्त हो जाएंगे तो प्रभु अपना भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये बने रहे तो आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। और रास्ता है केवल भक्ति, और कोई रास्ता नहीं। भगवान की निष्काम सेवा। भगवान ने कहा है, जैसे भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग, कई योगों का वर्णन किया, लेकिन 18वें अध्याय में बताया मैं जैसा हूं वो केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्जस्यास्मि तत्त्वतः, जैसा मैं हूं वैसा केवल भक्ति के द्वारा, और कोई रास्ता नहीं। स्वयं भगवान कह रहे हैं। और लोगों ने कई रास्ते बना लिए, हमारे मलिन मन ने कई रास्ते बना लिए, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जैसे शर्मा दास का उदाहरण प्रभुपाद में अष्टम स्कंद में लिखा हुआ है, शर्मा दास ने सोचा मैंने क्या सेवा सुबह करने के लिए, मैं जप ही करूंगा, हरिदास बन जाऊंगा, नहीं बन सका। हमें महान विभूतियों का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना, उनकी नकल नहीं करनी। लेकिन ये दुष्ट हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, हमारा मलिन मन, ये हमसे क्या क्या करवाता है, ये हमसे बहुत कुछ करवाता है। और जो ये करवाता है सब बुरा है, पाप करवाता है। कहा है कि बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की ना करो। भगवान को बेअंत कहो, उनका कोई अंत नहीं, और किसी की निंदा और चर्चा नहीं करो। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, उसके पाप ले लेते हैं अपने ऊपर। जब भगवान ने जिगाई मदाई का उद्धार किया था, जिगाई मदाई का जब उद्धार किया भगवान ने, तो बड़ी सुंदर कथा पर अभी नहीं सुनाऊंगा मैं। भगवान ने इन दोनों के पाप अपने ऊपर ले लिए, और भगवान के शरीर का गोरा रंग है गौर हरि का, कृष्ण का रंग तो काला है, लेकिन जब उन्होंने राधा जी का भाव दिया तो रंग भी ले लिया उनका, इसलिए उनको बोला गौरांग, गौरांग प्रभु, गौरांग महाप्रभु, गोरे रंग के भगवान काले होंगे। भक्त घबरा गए कि हमारे भगवान का रंग काला क्यों। तो भगवान कहते हैं मैंने दो पापियों के पाप लिए हैं, इसलिए मेरा रंग काला हो गया। कोई नहीं, तुम सब लोग कीर्तन करो। और ये जो पाप मैंने जिगाई मदाई के लिए हैं, ये निंदकों के शरीर में जाए, जो निंदा करते हैं दूसरों की। निंदा क्या है? झूठ को सच कहना और सच को झूठ कहना। और वैसे जो भक्त है ना, किसी की निंदा नहीं करता, पर भक्त तो अभी हम बने नहीं, इसलिए मन हमारा निंदा चुगली में लगा हुआ है, दूषित मन है, गंदा है। तो भगवान ने कहा गौर हरि ने कि ये मेरे अंदर जो मैंने इनके जो पाप लिए हैं, ये निंदकों के शरीर में जाए। तो जब किसी की निंदा कोई करता है तो उसके पाप ले लेता है। तुलसीदास ने रामायण में निंदकों को भी प्रणाम किया है, सबको। तो हम लोगों ने समझना है इन बातों को। हमारे जीवन में हमने देखा कई लोग आए, कई हमारे गुरु भाई जो हैं वो हमारी भावना को नहीं समझते थे, लेकिन प्रभुपाद सब पता था उनको, सबकी भावना पता था। वो जो दुर्व्यवहार करने वाले आज उनमें से कोई नहीं है, सब भक्तिहीन हो गए, भक्ति छूट गई उनकी, और वो बेचारे भटक रहे हैं। बिना भक्ति के तो भटकेंगे हम। तो एक मेरी भी गलती थी, मेरी गलती ये थी, पहले तो मैं लोगों से अच्छा व्यवहार करता था भाई, लेकिन वो ऐसा करते थे जैसे वो थे। मैं सोचता था कि मैं इनके साथ इतना अच्छा कर रहा हूं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मेरी गलती थी, मुझे उनसे कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये कोई बुरा है तो वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। अच्छा बनने में बड़ा समय लगता है, तो शुरू शुरू में ये दोष रहा, हमें अभी गुरु कृपा से समझ रहे हैं कि किसी से परापेक्षा नहीं करनी। मैंने सोच लिया ये आदमी ऐसा करे, लेकिन वो क्या करेगा, कैसा वो है वैसा करेगा, उसके मन के अंदर अगर बुराइयां हैं तो वो अच्छा काम थोड़ा करेगा और बुरा ही काम करेगा। तो एक रोग बन जाता है हमारा अपेक्षा का। एक तो अपेक्षा लोग करते हैं बस, दूसरे सब मेरे नौकर बने रहे, पर गुरु कृपा से हमें ऐसी बात नहीं थी। हम जिसके प्रति कोई अच्छा काम करते थे उससे अपेक्षा भी करते थे, पर वो भी नहीं करनी चाहिए थी। पर मैंने इसे अच्छा किया, ये अच्छा क्यों नहीं कर रहा, वो जैसा था वैसा करता है। अब जैसे तुम उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, सांप को अगर दूध पिलाओगे, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया सांप को अगर केला और दूध पिलाओगे, केला खिलाओगे सांप को, केला भी खाता है सांप, तो आप इसे खिलाया तो क्या वो दोस्त थोड़ा बनेगा आपका? सांप दोस्त नहीं बनेगा, उसका जहर बढ़ेगा, जहर बढ़ेगा और वो डंक मार सकता है। इसलिए हम लोगों को अपेक्षा नहीं करनी, काम और ईर्ष्या से मुक्त होने का प्रयास करना है, बस उसका रास्ता है भगवान की निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति। बस याद रखो निष्काम भक्ति। सारे बच्चे भी सुनो, सब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो निष्काम भक्ति करेंगे, करोगे नहीं? जो जो नहीं करेगा वो हाथ खड़ा करो, जो जो करेगा वो हाथ खड़ा करो। और देखो बदमाश ने हाथ नहीं खड़े, तू नहीं करेगा तो पता नहीं है, ऊंचा करो हाथ। बड़ों में जो जो निष्काम भक्ति करेगा वो हाथ खड़ा करो। ऊंचा करो ऊंचा, ऐनक वाली कहां तो निष्काम सेवा करेंगे। निष्काम सेवा से क्या होगा, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। आज मैंने थोड़ी सेवा की भगवान की, कुछ मांग लिया बदले में तो मिल जाएगा, लेकिन पाप नहीं कटेंगे। जब सेवा की, ये जो शब्द बड़े अच्छे हैं ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। लाख करोड़ हजार ये निष्काम भक्ति प्रभुपाद ने दी है। प्रभुपाद ने घर बार तो छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, अपना पद छोड़ दिया, भगवान की निष्काम सेवा की और प्रभुपाद काम वासनाओं से बिल्कुल मुक्त थे। एक बार कहा उन्होंने, सब लोग क्यों मेरी ओर आकर्षित हैं? क्योंकि मैं काम से मुक्त हूं। जब हम काम से मुक्त हो जाएंगे तो सब लोग भक्ति माता के प्रभाव से हमसे, हम पर, हमारी ओर आकर्षित होंगे। आज हमें काम विकार है इसके लिए कोई आकर्षित नहीं है। ठीक है, जब हम कोई बात करते हैं शास्त्र की तो उसका शास्त्र का प्रभाव थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ी देर के लिए है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन काल में पापों से मुक्त होना है, और दो बातें जो प्रभुपाद ने बताई हैं, काम और ईर्ष्या, इनसे मुक्ति भक्ति माता हमको देंगी और शुद्ध हो जाना है, निर्मल हो जाना है। राम जी ने भी कहा है रामायण में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, जिसके मन में छल कपट चित्र है वो मुझे नहीं पा सकता। और छल कपट चित्र बस काम और ईर्ष्या, इस सारी बीमारियों का जड़ है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो भगवत गीता के थारू पूरे संसार को देने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सुनो जो चौकड़ी मार के करते हैं ना प्रणाम, ये गलत है, जैसे ये कर रहा था ऐसे करना है, तो चौकड़ी मार के क्या करता है प्रणाम, तेरी टांगों में तकलीफ है, पूछ इसको तकलीफ है, फिर इसकी टांगों में तकलीफ है वो कुछ और बात है, चौकड़ी मार के नहीं, प्रणाम अच्छी तरह से करना है, घुटने जमीन से लगने चाहिए, सर और दो हाथ धरती माता को स्पर्श करने चाहिए,